पाठ 17 महान धर्मपतन। मुझे दर्शन में दिखाया गया कि एक समय में हिंदू मूर्ति पूजक क्रिश्चियनों को सताते थे और मृत्युदंड भी देते थे। खून की नदियां बहती थीं। बड़े लोग, विद्वान और सर्वसाधारण लोग सब बिना भेदभाव और दया माया से मारे जाते थे। धनी परिवार के लोगों को नया धर्म नहीं मानने के कारण दरिद्र बनाए जाते थे। इतना सताहट और कष्ट झेलने के बावजूद भी वे क्रिश्चियन लोग अपने धर्म से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपना धर्म को शुद्ध रखा। मैंने देख कि शैतान परमेश्वर के लोगों को दुख और कष्ट देने में विजयी हुआ और खुशी मनाने लगा। ईश्वर ने विश्वासी मर्तिरों को बहुत हमदर्दी से देखा और उस डरावना समय में जो जीते थे उनको कृपा की दृष्टि से देखा, क्योंकि वे उसके नाम के लिए दुख झेलना पसंद कर रहे थे। हर दुख और कष्ट जो उन्हें सहना पड़ा तो उनके लिए स्वर्ग में इनाम की भी वृद्धि हुई। संतों के दुख सहने से शैतान खुश तो था, पर उसे संतोष नहीं मिला। वह मन और शरीर दोनों को वश में करना चाहता था। जिन क्रिश्चियनों को शारीरिक दुख सहना पड़ा वे और भी अधिक यीशु के नजदीक आए। उन्होंने दूसरों को भी उस रास्ते में चलने की प्रेरणा दी। मरने से ज्यादा डर यीशु की आज्ञा तोड़ने में था। शैतान ने उन्हें ईश्वर को नाखुश करने को कहा। यदि वे ऐसा करते तो अपनी शक्ति, दृढ़ता और सुरक्षा को खो देते। यद्यपि हजारों को कत्ल कर दिए जाते थे, फिर भी उनके स्थान लेने के लिए हजारों की संख्या में आ जाते थे। यद्यपि वे सताहट और मृत्युदंड पा रहे थे तो भी यीशु के पीछे चलना बंद नहीं करते थे और उनकी संख्या बढ़ती जाती थी, जहां शैतान की घट रही थी। इसे देखकर शैतान ईश्वर का राज्य का विरोध करने के लिए और कारगर उपाय सोचने लगा। उसने हिंदू राजाओं को क्रिश्चियन धर्म ग्रहण करने के लिए तैयार किया। बिना मन उन्होंने यीशु का क्रूसघात, पुनरुत्थान पर विश्वास कर क्रिश्चियनों के साथ मिलने का बहाना किया। ईश्वर की मंडली के लिए ये क्या ही भयंकर दिन हुआ। ये तो मानसिक वेदना थी। कुछ लोग सोचने लगे कि यदि वे आकर मूर्ति पूजकों से मिल जाएं, जो कुछ अंश में क्रिश्चियन विश्वास को ग्रहण कर चुके हैं, तो वे सचमुच मन बदले हुए लोग होंगे। शैतान बाइबल की सिद्धांतों को बर्बाद करने चाह रहा था। अंत में मैंने देखा कि क्रिश्चियन धर्म का स्तर नीचे गिराया गया और हिंदू लोग इसको ग्रहण करने लगे। वे तो मूर्ति पूजक थे और जब क्रिश्चियन हो गए तो मूर्ति पूजा करने की रीति साथ में ले आए। उन्होंने बड़ी सरलता से क्रिश्चियनों को अपनी मतलब को सिद्ध करने के लिए संतों की मूर्ति, यीशु की और उसकी माता मरियम की मूर्ति पूजा करने को आरंभ कर दिया। धीरे धीरे क्रिश्चियन लोग उनसे मिल गए। ईसाई धर्म भ्रष्ट हो गया। मंडली ने सभ्यता और शुद्धता खो दी। कुछ लोग उनसे मिलना इनकार कर इसकी शुद्धता कायम कर ईश्वर ही की उपासना करने लगे। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की कोई भी मूर्ति की उपासना नहीं की। पतित मंडली के सदस्यों को देखकर शैतान खुशी मना रहा था। उसने इनको उन सच्चे धर्म पालन करने वालों के विरुद्ध भड़काकर कहा कि इन्हें भी उनकी रीति विधि अनुसार मूर्ति की पूजा करनी है या तो मृत्युदंड सहने के लिए तैयार होना है। सताहट की अग्नि तेज कर दी गई और क्रीष्ट की मंडली को सताना आरंभ कर दिया गया। लाखों क्रिश्चियनों को बेरहम से मौत के घाट उतारा गया। मेरे सामने इस तरह से दर्शाया गया। बहुत अधिक संख्या में हिंदू मूर्ति पूजक लोग काला झंडा लेकर चल रहे थे, जिसमें सूर्य, चांद और तारों की छाप थी। इस दल के लोग बहुत भयंकर और गुस्से वाले जान पड़ते थे। मुझे एक दूसरा दल को दिखाया गया, जिनके पास श्वेत झंडे थे। उसमें प्रभु के लिए शुद्धता और पवित्रता लिखा हुआ था। उनके चेहरे से दृढ़ता और बिना कुड़कुड़ाए कष्ट सहने की झलक दिखाई दे रही थी। मैंने देखा कि हिंदू मूर्ति पूजक वहां पहुंचकर भारी संख्या में मार डाले। क्रिश्चियन लोगों को बर्बाद कर दिया गया, परंतु जो बचे थे वे एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए क्रीस्ट के झंडे तले आ गए। जब कुछ लोग मारे जाते थे तो उनकी जगह में सैकड़ों लोग उठकर क्रीस्ट का झंडा को ऊंचा उठाते थे। मैंने देखा कि मूर्ति पूजकों का दल आपस में सलाह कर रहे थे। उन्होंने मसीहियों को अपनी बात मनवाने में सफलता नहीं पाई, इसलिए दूसरा उपाय सोचने लगे। मैंने देखा कि उन्होंने अपना झंडा को झुकाकर सच्चे मसीहियों के पास आकर एक प्रस्ताव रखा। पहले तो उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद फिर मैंने देखा कि क्रिश्चियनों का दल आपस में सलाह करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि वे अपना झंडा को झुकाएं और उनका प्रस्ताव को मान लें और अपने प्राणों को बचावें। अंत में उन्होंने अपना झंडा को उनके बीच ऊपर उठाने में सफलता पाई, परंतु कुछ लोगों ने इसे स्वीकार न कर दृढ़ता से यीशु की पवित्रता का झंडा ऊपर उठाए रखा। मैंने यह भी देखा कि बहुत सी क्रिश्चियन कंपनी ने अपना झंडा नीचे कर मूर्ति पूजकों को योग दिया। इस पर सच्चाई में स्थिर रहने वालों ने दृढ़ता से झंडा पकड़कर उसे ऊंचा उठाए रखा। मैंने देखा कि सत्य का झंडा के नीचे रहना छोड़कर लोग लगातार भागे जा रहे थे और मूर्ति पूजकों का दल में आकर काला झंडा के नीचे आ रहे थे। उन्होंने श्वेत झंडा के नीचे रहने वालों को मार डाला। फिर भी कुछ लोगों ने सादा झंडा को ऊपर उठाए रखा और दूसरे लोग भी मदद के लिए चारों तरफ से आ गए। यहूदियों ने पहले हिंदुओं को यीशु के विरुद्ध उसकाया था। वे भी इस दोष से वंचित न थे। न्यायालय में जब पिलातुस ने यीशु को दोष लगाने में हिचकिचाया तो यहूदियों ने गुस्सा से चिल्लाया, उसका खून हमारे ऊपर और हमारे बच्चों पर लगेगा। यहूदी जातियों को इस अभिशाप की पीड़ा बाद में उठानी पड़ी। गैर मसीही लोग उनके दुश्मन बन गए। जो मसीही लोग यीशु के क्रूसघात पर ठोंके जाने चाहते थे कि यहूदियों पर ईश्वर की ओर से भारी ताड़ना आवे। बहुत से अविश्वासी यहूदी मार डाले गए और कुछ इधर उधर दूसरे देशों में तितर बितर हो गए। उन्हें सब प्रकार की सजाएं दी गईं। यीशु का लोहू और जिन चेलों का खून उन्होंने बहाया था उसका भयंकर प्रतिफल उन्हें मिला। ईश्वर का श्राप उन पर पड़ा। वे ईसाई और हिंदुओं के द्वारा घृणित मजाक का कारण बन गए। वे दूसरों से अलग हो गए, नीच और घृणा का पात्र बन गए, मानो वे कैन के वंशज हैं। फिर भी मैंने देखा कि ईश्वर ने इन्हें विचित्र ढंग से बचा के रखा, उन्हें जगत में चारों ओर फैला दिया। उन्हें ईश्वर की शापित जाति के रूप में देखा गया। मैंने देखा कि ईश्वर ने यहूदियों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने से छोड़ दिया था। फिर भी इनमें कुछ लोगों को उसने दिल का काला पर्दा फाड़कर दूरदर्शी होने का मौका दिया। कुछ लोगों को अभी देखकर समझना बाकी है कि उनके विषय जो भविष्यवाणी लिखी गई थी सो पूरी हुई। वे अभी यीशु को जगत का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। वे देख सकेंगे कि यीशु को ना करने और क्रूसघात करने का क्या बुरा नतीजा मिला। यहां वहां एक दो यहूदी लोग मन बदलेंगे, परंतु एक राष्ट्र के रूप में तो सदा के लिए ईश्वर से त्याग दिए गए हैं। इसका विस्तृत अध्ययन के लिए धर्म सुधार और खोज पड़ताल अध्याय शब्दकोश में देखें।